प्रेरितों के काम अध्याय 13। अंताकिया के चर्च में कुछ भविष्यवक्ता और शिक्षक थे, बरनबास, नाइजर कहलाने वाला शिमोन, और सारेने का यूसियस, और मनाइन जो हेरोदेस टोटोर के साथ पाला पोसा गया था, और शाउल। जब वे उपवास के साथ यीशु का भजन कीर्तन कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा,
मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।
उपवास और प्रार्थना के बाद उनके ऊपर हाथ रखकर उन्होंने पौलुस और बरनबास को विदा किया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बरनबास और शाउल सिलोकिया गए और वहां से जहाज पर चढ़कर क्रुपुस को रवाना हो गए। जब वे सलमिस पहुंचे, उन्होंने यहूदी आराधनालयों में परमेश्वर का वचन दिया। वहां पर यूहन्ना उनका सहायक था। जब वे पाफोस टापू से गुजर चुके, उन्हें बर येसु नामक यहूदी जादूगर और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वे देश के प्रोकॉन्सल सर्गियस पौलुस नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ था, जो बरनबास और पौलुस से परमेश्वर का वचन सुनना चाहता था। लेकिन एलीमस जादूगर ने उनका विरोध किया और प्रोकंसुल को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरकर उसकी तरफ गौर से देखा और कहा,
तुम सब तरह के धोखे और चालाकी से भरे शैतान के बच्चे, सारी धार्मिकता के दुश्मन, क्या तुम यीशु के सच्चे रास्ते को खराब करना बंद नहीं करोगे? अब देखो, यीशु का हाथ तुम्हारे खिलाफ है, तुम अंधे हो जाओगे और कुछ समय तक रोशनी को नहीं देख सकोगे।
तुरंत उसके ऊपर एक धुंधलापन और अंधेरा छा गया और वे टोटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसकी मदद करे। प्रोकोंसल ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के वचन से आश्चर्यचकित होकर विश्वास किया। पौलुस और उसके साथी पाफुस से निकलकर पंफोलिया में पिरगा तक गए। वहां यूहन्ना उन्हें छोड़कर वापस यरूशलेम चला गया। पिरगा से निकलकर वे पिसिदिया में अंताकिया आए। वहां सबत के दिन वे आराधनालय में जाकर बैठ गए। नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं की किताब के पढ़े जाने के बाद आराधनालय को चलाने वालों ने उन्हें समाचार भेजा कि
हे भाइयों, यदि तुम्हारे पास कुछ संदेश है तो दो।
तब पौलुस ने खड़े होकर अपने हाथों को दिखाकर कहा,
हे इसराइलियो, तुम जो परमेश्वर को इज्जत देते हो, सुनो। इन इसराइलियों के परमेश्वर ने हमारे बुजुर्गों को चुना। जब वे मिस्र देश में परदेशी की तरह रह रहे थे, तब उनकी तरक्की की। अपनी बड़ी ताकत से वह उन्हें मिस्र से बाहर ले आए। तकरीबन 40 साल तक परमेश्वर जंगल में उनके बर्ताव को सहते रहे। जब कनान देश में उन्होंने 7 राष्ट्रों को बर्बाद कर डाला, तब से उनकी जमीन को बांट दिया। तकरीबन 450 साल तक शमूएल के आने तक उन्होंने न्यायी दिए। इसके बाद उन लोगों ने एक राजा की मांग की। परमेश्वर ने उन्हें कीश के बेटे शाउल को, जो बेंजामिन के गोत्र का था, राजा होने के लिए दिया। उसने 40 साल तक शासन किया। जब उसे सिंहासन से उतार दिया गया, तब दाऊद को राजा होने के लिए खड़ा किया। दाऊद के बारे में यह गवाही दी गई, मैंने ईशय के बेटे दाऊद को पा लिया है, वह मेरे मन के मुताबिक है और जो मैं कहूंगा वह वही करेगा। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार इसी व्यक्ति के वंश से इसराइल के लिए एक मुक्तिदाता यीशु को भेजा। यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसराइल के सभी लोगों के लिए मन बदले जाने के बपतिस्मे का संदेश दिया। जब यूहन्ना का समय खत्म होने पर था, उसने कहा, तुम मुझे जो समझते हो मैं वो नहीं हूं, लेकिन देखो, मेरे बाद में एक आने वाला है, मैं इस लायक भी नहीं कि उसके पैर की जूतियों को उतारूं। हे लोगो, भाइयो, अब्राहम के खानदान के बच्चों, तुम में से जो भी परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे लिए यह मुक्ति का संदेश भेजा गया है। क्योंकि यरूशलेम में रहने वाले लोगों और उनके शासकों ने न उन्हें पहचाना, न ही भविष्यवक्ताओं की वाणी सुनी, जिनकी किताबें हर शब्द के दिन पढ़ी जाती हैं। यीशु मसीह का दोषी ठहराया जाना भी भविष्यवक्ताओं की बात का पूरा होना था। हालांकि उन्होंने यीशु को मौत की सजा का दोषी नहीं पाया, फिर भी उन्होंने पिलातुस से विनती की कि उन्हें मार डाला जाए। जब यीशु के बारे में सब लिखा हुआ उन्होंने पूरा किया, तो उन्होंने यीशु को क्रूस पर से उतारकर कब्र में रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया। गलील से जो लोग यीशु के साथ यरूशलेम आए थे, उन्होंने बहुत दिनों तक यीशु को देखा। वे लोग दूसरों के सामने इस सच्चाई के गवाह थे। हमने इस खुशी की बात की घोषणा तुमसे की कि जो वायदा बुजुर्गों से किया गया उसे हमारे लिए यीशु को जिलाकर पूरा किया, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें आज जन्म दिया है। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जो फिर कभी मरने के नहीं, और ये भी कहा, मैं तुम्हें दाऊद की अटल आशीष दूंगा। इसलिए किसी और भजन में भी उन्होंने कहा, आप अपने पवित्र जन को कभी भी सड़ने नहीं देंगे। परमेश्वर की इच्छा में अपनी पीढ़ी की सेवा करने के बाद दाऊद मर गया, अपने बुजुर्गों की कब्र के पास ही दफनाया गया और सड़ गया। लेकिन जिसे परमेश्वर ने जिलाया वह मिट्टी में सड़ते नहीं रहे। इसलिए भाइयों और बहनों, यह जान लो कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराधों की माफी का संदेश दिया गया है। जिन्होंने उन पर भरोसा किया वे सभी निर्दोष ठहराए गए। मूसा के नियम शास्त्र से यह निर्दोष ठहराया जाना संभव नहीं था। इसलिए सावधान रहना, ताकि जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा था वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर न आए। हे बदनामी करने वालों, देखो और आश्चर्य से भर जाओ और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे समय में एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके बारे में अगर तुम्हें कोई बताए तो तुम बिल्कुल उसकी बात न मानना।
जब पौलुस और बरनाबास बाहर जाने लगे तो लोगों ने उनसे विनती की कि आने वाले सबत के दिन यही बातें उन्हें फिर सुनाई जाएं। जब आराधना खत्म हो गई तो बहुत से यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग पौलुस और बरनाबास के साथ चल पड़े। उन्होंने बातचीत करते हुए उनसे विनती की कि वे परमेश्वर की असीम कृपा में बने रहें। अगले सबत के दिन लगभग पूरा शहर परमेश्वर का वचन सुनने इकट्ठा हुआ। जब यहूदियों ने भीड़ देखी तो ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने निंदा करते हुए पौलुस की बातों की काट छांट की। बड़ी हिम्मत करते हुए पौलुस और बरनाबास ने कहा,
यह जरूरी था कि पहले परमेश्वर के वचन को तुम तक पहुंचाया जाए, लेकिन यह देखकर कि तुम इसे अपनाते नहीं हो और हमेशा की जिंदगी पाने के लायक नहीं बनते, अब हम गैर यहूदियों को वचन सुनाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें यह हुक्म दिया है, मैंने तुम्हें गैर यहूदियों के लिए रोशनी ठहराया है कि तुम पृथ्वी के आखिर तक मुक्ति का कारण हो।
जब गैर यहूदियों ने यह सुना तो वे खुश हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई की। उन सभी ने विश्वास किया जो अनंत जीवन के हकदार थे। यीशु का संदेश उस सारे इलाके में फैल गया। लेकिन यहूदियों ने भक्त, ऊंचे घराने की महिलाओं और शहर के मशहूर लोगों को भड़काया। उन्होंने पौलुस और बरनाबास के खिलाफ बलवा करवा कर उन्हें अपनी सरहद के बाहर निकाल दिया। तब वे उनके खिलाफ में अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए और शिष्य खुशी और पवित्र आत्मा से लगातार बढ़ते गए।